नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स पार्ट टू। जी हाँ, इसका पहला पार्ट हम आपको सुना चुके हैं, आज उसका दूसरा पार्ट आपको सुनाने जा रहे हैं। और शिक्षार्थियों, ये आपकी बुक का लेसन नंबर 10 है और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगू जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स पार्ट टू।
नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम प्रोसेसिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, इसी में हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का चैप्टर्स नहीं रखे हैं, पर फिर भी उसके बारे में समझने की जरूरत इसलिए होती है ताकि इन दोनों चीजों को एक टूल समझ के इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करते हैं, या आप अपने लिए जब आप आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तो और आगे ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, जब भी आप जाएंगे तो आप अपनी लाइब्रेरी को कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपके अपने लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के बारे में जानना, थोड़े से क्लास नंबर्स को याद रखना, मेन मेन क्लासेस क्या है, उससे आपको काफी फायदा हो जाता है इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, इन्फॉर्मेशन अपने पास लेने के लिए। जो लाइब्रेरी में इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इसको विस्तार से कैसे रखा जाता है, आप अगर खुद ही सोचेंगे देखा जाए तो, अगर हम घर में भी क्लासिफाई ना करें चीजों को कि ये इस तरह की चीजें इससे अलग रहे, या अगर केमिस्ट अपनी दवाइयों को ना अलग अलग क्लासिफाई करे, अल्फाबेटिकली लगाए या डिजीज वाइज लगाए, जैसे भी उनको लगाना पड़ता है, अदरवाइज तो जब आप जाएंगे तो आपको कभी कोई चीज अदरवाइज नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारे लिए क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक पार्ट, एक अंक है लाइब्रेरी साइंस का जो कि जिसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कि हमें प्रैक्टिकली सिखाता है क्लास नंबर कैसे देना होता है, कैटलॉगिंग कैसे करनी होती, और ये सब चीज जब हम कर रहे हैं तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं। टेक्निकल प्रोसेसिंग जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हमें जरूरत टेक्निकल प्रोसेसिंग की लाइब्रेरीज को, बाकी लोगों को क्यों नहीं पड़ती, पर आप सब जानते हैं कि इतने ज्यादा रिसर्च होने की वजह से इतना ज्यादा मटेरियल प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं लाइब्रेरी में, अगर हम हर चीज को ऑर्गेनाइज ना करें तो वो एक स्टोर हाउस की तरह मटेरियल आता जाएगा, जमा होता जाएगा। अगर हम उसको प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई ना करें कि ये आर्टिकल्स हैं हमारे, ये बुक्स हैं, और ये अलग चीजें हैं, न्यूज़लेटर्स हैं, ये पैम्पलेट्स हैं, इन सब चीजों को, ये मैप्स है, जो भी अलग अलग तरह की चीजें आती हैं लाइब्रेरी में, उन सभी को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करके रखते हैं ताकि जो भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आ जाए उनको आसानी से, उनके स्टेप्स जो हैं वो आसान हो जाए और आसानी से वो अपना इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं वहां से जा। जो क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप, क्या क्या करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन इसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे पास, इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, हम शेल्फ लिस्ट्स भी बनाते हैं, और हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइब्रेरी में उनको लेबलिंग भी करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी जो हमारे पास प्रोसेसिंग में, जिसको हम टेक्निकल प्रोसेसिंग कहते हैं, उसमें ये कुछ चीजें आती हैं। इन सबसे मैं पहले, हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की, कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे हमें जो भी रिसोर्सेज, जितने भी तरह के रिसोर्सेज लाइब्रेरी में हैं, उन्हें ढूंढना एकदम मुश्किल हो जाता है। क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज है जिससे कि हम टाइटल को पढ़ के उसके सब्जेक्ट को समझते हैं कि उस बुक का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, उस सब्जेक्ट की वजह से हम ग्रुपिंग कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो भी ग्रुप्स उस डॉक्यूमेंट के उस तरह से मिलते हैं हमें तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स को ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसी तरह से हम उस सब्जेक्ट के अंडर उसे क्लासिफाई करते हैं। इसका फायदा हमें क्या है? क्लासिफिकेशन का फायदा ये है, हमें रीडिंग मटेरियल जो भी है हमें आसानी से मिल सके, और जो हमारे पास अनवांटेड मटेरियल है, जो हम नहीं रखना चाहते, जो हमारी लाइब्रेरी में ज़रूरत नहीं है, हम उसे अलग कर सकें। और जो हमारा क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नोटेशन, जिसके बारे में हमने बाद पिछली बार पढ़ा, वो है कि जो भी क्लासिफिकेशन होती है वो किस बेस पे बनती है। वो सिंबल्स के बेस पे बनती है, लेटर्स के बेस पे बनती है, चाहे हम अल्फाबेटिकली बना ले, चाहे आप अल्फा न्यूमेरिक ले ले, दोनों ले ले, अल्फाबेट्स भी ले ले और न्यूमेरिक वैल्यू भी ले ले, दोनों को मिला के भी बनती है। तो नोटेशन का मतलब ये है, ये जो सिंबल्स और लेटर्स हैं इनको यूज करने में क्वालिटी जो चाहिए हमें, वो बहुत ही सही क्वालिटी चाहिए होती, क्यों ये नोटेशन जो में है ये सिंपल होनी चाहिए। इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो याद रखने के लिए जरूरी है, कि नोटेशन के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिंप्लिसिटी, ये बहुत सिंपल होना चाहिए, आराम से हर कोई इसे पढ़ के इंटरप्रेट कर पाए, आसानी से पता चले हमें 317 एजुकेशन का नंबर है, ये हर किसी को जल्दी से याद हो सकता है। तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी मतलब ये छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि मैं अपने 8 शब्दों का 8-10 लेटर्स का बना लिया तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से न मैं उसे पढ़ पाऊंगी न मैं उसे इंटरप्रेट कर पाऊंगी। तो इसको छोटा होना भी जरूरी है। और प्रोनाउंस करने के लिए जब मैं आपको बता रही हूँ 370.71 इसका नंबर है, ये इस सीनियर सेकेंडरी के एजुकेशन का नंबर है, तो इसमें जो है बोलने में भी आसानी होनी चाहिए। ये जरूरी है किसी भी क्लासिफिकेशन के जब हम उसे बनाते हैं, क्लासिफाइंग हम लोग तो क्लासिफिकेशन बना नहीं सकते हैं, इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट का दिमाग लगाया हुआ है, जिन्होंने डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बनाई, जिन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन बनाई। डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आपको, मेलविल डिवे ने बनाई थी, और उन्होंने खाली न्यूमेरिकल्स का जो नंबर्स हैं उनका यूज किया था, और कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर रंगनाथन ने बनाई थी, इन्होंने दोनों चीज़ों का यूज किया। अब अगर हम आपको एग्जाम्पल पे, मैंने आपको क्योंकि हमारी एजुकेशन की लाइब्रेरी तो एग्जाम्पल ज़्यादा एजुकेशन का ही आता है, एजुकेशन का नंबर हो गया 370, ऐसे केमिस्ट्री का नंबर है 540, और कोलन क्लासिफिकेशन में इनका नंबर होगा, एजुकेशन का नंबर है टी और केमिस्ट्री का नंबर है ई। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसे थोड़ा बहुत याद रखें कि टी में अगर लगाया हुआ तो इसका मतलब एजुकेशन का नंबर जा रहा है, लाइब्रेरी साइंस का है 020 और कोलन क्लासिफिकेशन में उसका नंबर है 2। तो ये मेन मेन क्लासेस जो हैं कोलन क्लासिफिकेशन में है 30 या 20 नंबर्स जो हैं, इन्हें थोड़ा सा रट लें, थोड़ा सा याद रख लें, तो ये एक तो एग्जाम में भी काम आएगा आपके, और वैसे भी लाइब्रेरी को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉल नंबर की। कॉल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैं आपको दोबारा से उस चीज़ को रिमाइंड कर रही हूँ ताकि वो लेसन का कनेक्शन आपका रहे। कॉल नंबर वो है जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, क्लास नंबर जो हमने क्लासिफिकेशन स्कीम से लिया, बुक नंबर जो हमारे ऑथर का नाम है उस बुक का, उसके पहले 3 वर्ड्स, आर रेफरेंस के लिए ले लेते हैं, डी डॉक्यूमेंट के लिए लिख लेते हैं। ये एक तरह का समझिए आप एड्रेस सा बन जाता है उस बुक का, कि हमने क्लास नंबर ले लिया, फिर बुक नंबर ले लिया, अगर ये रेफरेंस की किताब है तो आर डाल दिया, अगर ये कोई डॉक्यूमेंट है नॉर्मल तो उसको हमने डी डाल दिया। इस तरह से इस किताब को अगर हमारे पास कई कॉपीज हैं इस वाले बुक की, तो हम उस पर कॉपी नंबर भी डाल देते हैं, ये 1, 2, 3, 4 मल्टी वॉल्यूम में बी लग जाता है नंबर, मल्टी वॉल्यूम में 1, 2, 3, 4 जितने भी वॉल्यूम्स होते हैं उसको कोलन करके हम बोर भी लगा देते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है ये वाली बुक जो है ये मल्टी वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है 2 है, क्योंकि हमने क्लास बुक नंबर कॉल नंबर के बाद हमने कोलन करके वो भी डाला हुआ होता है। तो हमारा कॉल नंबर किस किस चीज से बनता है, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, ऐसे बनता है। जैसे कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स बाय पीवी नायक की बात कर रहे हैं तो क्या बनता है, 530 हम डी 530 NAI, तो डी हो गया डॉक्यूमेंट जो ये है, 530 हो गया हमारा फिजिक्स का जो नंबर है, NAI तो था नायर का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे नंबर बन गए। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, हम जो क्लासिफिकेशन है, जो ये कॉल नंबर है, ये हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड रहता है। ऐसे अगर कोई और एग्जांपल है, सेन गुप्ता है, एलिमेंट्री एजुकेशन बाय सेन गुप्ता, एम के सेन गुप्ता, तो हमने इसको कोलन में क्लास नंबर देने की कोशिश की। एजुकेशन का नंबर आपको पता है टी है, तो हम एलिमेंट्री एजुकेशन T15, क्योंकि ये 1972 की किताब है, N19 का नंबर है, 72 का मतलब 72 है, तो बाकी सेन गुप्ता का TD हो गया, कलेक्शन नंबर आपका TD हो गया, इंडिकेटिंग द बुक बिलोंग्स टू एजुकेशन डिपार्टमेंट एज पर द कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। तो ये सारी इसी तरह से हमने आपको बुक में भी इससे आपको डिसइंटेग्रेट किया है इस नंबर को। T15 क्लास नंबर है एलिमेंट्री एजुकेशन का। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक कौन से बेसिक क्लास में जाएगी, बुक का सब्जेक्ट क्या है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें लगता है ये कि स्कूल एजुकेशन है, तो फिर एजुकेशन तो है ही ना, एजुकेशन के अंदर स्कूल एजुकेशन है। फिर उसके बाद ये तो नॉर्मल जो दो क्लासिफिकेशंस कॉमनली लोग यूज करते हैं, कॉमनली लाइब्रेरीज यूज करती है, वो है डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन। और भी कई क्लासिफिकेशंस है, जिसे कि हम बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, ये सारी क्लासिफिकेशंस भी यूज की जाती है। अब अगर डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तो डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जैसे मेलविल डिवे ने 1876 में इसे बनाया था, वो एक मैथमेटिशियन थे खुद, पर उन्होंने इस लाइब्रेरी के शेड्यूल को 4 में डिवाइड किया है, 2 1 और 2 जो है हमारे शेड्यूल्स हैं, चौथा हमारा हम इसमें इंडेक्स मिलता है हमें, 1st 1 टेबल्स भी हैं, 2 और 3 शेड्यूल्स हैं। ये इसमें सबसे ज़्यादा किस पे जोर देता है, ये इंस्टेड कि हम किसी भी डिसिप्लिन में जाएं, हम सब्जेक्ट पे जोर दे देते हैं। मतलब इसमें पर्टिकुलर चीज़ें जो है, होल वर्ल्ड जो देखा गया है उसको 10 क्लासेस में डिवाइड किया गया, 10 में ही इन्होंने टोटल डिसिप्लिन को किया है। 10 क्या क्या है वो, जनरेलिया है 000, फिर 100 है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 है रिलीजन, 300 है सोशल साइंसेज, 400 है लैंग्वेजेस, 500 है नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स, 600 है टेक्नोलॉजी, 700 है द आर्ट्स, फिर है लिटरेचर एंड रियोटेक, एंड 900 है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टोटल यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 10 में डिवाइड किया है। तो हमें मेन क्या याद रखना है इसमें, ये 10 क्लासेस हमने याद रख लिए, और इसका इम्पोर्टेंट भी ये है, ये क्लास ये सब्जेक्ट को से ज़्यादा डिसिप्लिन पे ध्यान देता है। और क्या सबसे बेसिक जो चीज़ बन जाती है आपकी डिसिप्लिन, नहीं तो आप देखेंगे सोशल साइंसेज में तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, मगर अगर आपको लग रहा है कि ये जो टाइटल है मेरे पास, ये लग रहा है सोशल साइंसेज का बेस लेके बना हुआ है, तो आप सबसे पहले इसे सोशल साइंसेज में ही जाएंगे, एक बेस नंबर आप सोशल साइंसेज का लेंगे, वहां से आप इसका एक बेस नंबर बनाएंगे, फिर एड ऑन हो जाता है, टेबल्स से ऐड हो जाता है या स्टैंडर्ड सब डिविजन्स है वहां से ऐड हो जाता है। ये बेसिकली प्योर अरेबिक न्यूमरल नोटेशन है, जैसे 1 to 9 तक जो भी नोटेशंस आती हैं यही इसमें यूज होते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, 3 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल डाला जाता है, मतलब 3 जो है, 1st 3 डिजिट जो है वो हमारे यहाँ पर मेन सब्जेक्ट को, मेन डिसिप्लिन को मिल गया, तो आप इस डिसिप्लिन में फिर आप फर्दर सब डिविजन्स देखेंगे। ये मैंने जैसे बताया कॉम्पैक्ट है, 4 वॉल्यूम्स का सेट है, जिसमें हमें सारे शेड्यूल्स मिल, 2 शेड्यूल्स हैं, एक टेबल्स है और एक इंडेक्स है। इंडेक्स हमें बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इंडेक्स से आप क्या करते हैं, अगर आप कभी कभी बहुत समझ नहीं आ रहा है कि इस किताब का क्लास नंबर क्या हो सकता है, तो आप इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स आपको कुछ मदद कर देता है, वो बता देता है आपको कि ये हो सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तभी आप देखेंगे कई लाइब्रेरीज जो किसी सब्जेक्ट से पर्टिकुलर होती हैं, जैसे हम हमारी लाइब्रेरी सपोज या नीपा की लाइब्रेरी वो एजुकेशन से पर्टिकुलर है, तो उनके मोस्टली जो नंबर्स होंगे वो एजुकेशन में ही जाएंगे, एजुकेशन में ही फर्दर डिवाइड होंगे। और अगर कोई जनरल लाइब्रेरी होगी, जनरल लाइब्रेरी में हर तरह की किताब मिलेगी आपको, तो कोई जरूरी नहीं है आपको बुक एजुकेशन की फील्ड की आप सिर्फ एजुकेशन में ही रखेंगे, उसे आपको ये लगेगा। मेन एम हमारा ये होता है कि जो भी यहाँ पर यूजर आए, यूजर की नज़र किताब पे पड़नी चाहिए और यूजर का उस किताब का यूसेज होना चाहिए, वो किताब उसको निकालने में आसानी होनी चाहिए। तो इसलिए लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। बेस जो क्लास का है आपका, वो आप अपनी सोच से भी लगा सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है ये वाली किताब मेरे पास जो है अर्थ साइंसेज में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है 521, तो आप अर्थ सब्जेक्ट साइंसेज को लेकर के साइंसेज में भी डाल सकते हैं, ताकि आपको साइंसेज में जब कोई ढूंढेगा तो आपको साइंसेस में मिल जाएगी। अगर आपके पास दो ही किताबें, तीन ही किताबें अर्थ साइंसेस पे हैं, तो आप इसे अलग से रख के इनके खो जाएंगे लाइब्रेरी में। तो ये एक हमेशा लाइब्रेरी की एक पर्टिकुलर चीज भी रहती है कि मुझे कैसे क्लासिफाई करना है। आपको एक बेसिक बैकग्राउंड तो मिला हुआ है क्लासिफिकेशन का, आप कैसे करेंगे, पर अपना दिमाग भी थोड़ा अलग से लगाना पड़ता है। जैसे कि इन्होंने 500 हमें साइंसेस को दे दिया है, प्योर साइंस और मैथमेटिक्स को दे दिया। अब इसमें 530 जो है फिजिक्स का है, मैकेनिक्स का 532 है, फ्लूइड मैकेनिक्स का 533 है, गैस मैकेनिक्स का। इसी तरह से अब मैथमेटिक्स 510 देखेंगे तो मैथमेटिक्स का है, 520 एस्ट्रोनॉमी का है। तो 500 एक बहुत ब्रॉड डिसिप्लिन ले लिया इन्होंने, जिस 500 को इन्होंने फर्दर डिवाइड करते गए, छोटा छोटा बनाते गए, इसको 510 को मैथमेटिक्स को कर दिया, 520 एस्ट्रोनॉमी को दे दिया, फिर एस्ट्रोनॉमी के अंदर फिर और देखोगे आप कितने सारी क्लासेस हैं। ये इसी तरह से आप देखोगे कि नंबर उस हिसाब से बनते हैं। आपको नंबर बनाना नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा बहुत समझना है कि इन्हें मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, इसे मैं इंटरप्रेट कैसे कर सकता हूँ। तो इसमें एक टेबल वाली जो बुक है, टेबल्स में आपको मिलेंगे 7 टेबल्स बनाए हैं उन्होंने। उन टेबल्स में पहला जो है स्टैंडर्ड सब डिविजन्स का है, दूसरा जो है जियोग्राफिकल एरियाज का, जैसे अगर दिल्ली का नंबर लगाना, लंदन का नंबर लगाना है, या नाइजीरिया का नंबर, कहीं किसी जगह का भी जो नंबर लगाना है वो आप देखोगे ज्योग्राफिकल एरिया में जाओगे। हिस्टोरिकल पीरियड्स भी हैं उसमें और पर्सन्स भी हैं उसमें। आपको अगर किसी की बायोग्राफी है, किस पर्सन की बायोग्राफी किस जगह की है, तो वो सब चीज़ें आपको टेबल 2 में मिल जाती है, जो हम एड ऑन कर लेते हैं बेसिक नंबर को। इसको हम फर्स्ट नंबर मान के नहीं बनाते, इसे हम एड ऑन कर लेते हैं। जो सब डिविजन्स हैं आर्ट्स का या इंडिविजुअल लिटरेचर का, स्पेशल लिटरेरी फॉर्म्स, ये टेबल 3 में मिलते हैं हमें। तो यूजुअली हमारे पास जो 800 का नंबर है वो लिटरेचर का है, तो जो 800 में नंबर हमारा बेसिक चला जाता है, अगर उसको टेबल ऐड करना होता है तो वो 3 टेबल से मोस्टली टेबल 3 पे चला जाता है। 3 में भी 3A है, वर्क्स अबाउट द इंडिविजुअल ऑथर्स, किसी ने इंडिविजुअली जो काम करा है वो टेबल 3A में आएगा। 3B में आएगा वर्क्स अबाउट मोर देन वन ऑथर, अगर कई ऑथर्स हैं उनका सब डिविजन लग जाता है। 3C में है नोटेशन टू बी एडिट वेयर इंस्ट्रक्टेड इन टेबल 2B। तो इस तरह से यहां पर 3C में भी उन्होंने 3B के लिए टेबल्स अगर लगाई हुई हैं, टेबल्स में नोटेशन लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वहां पर, आप देखोगे नंबर के नीचे एक इंस्ट्रक्शन भी होती है, वही इंस्ट्रक्शन से पढ़ के हम नंबर ऐड कर लेते हैं। फिर टेबल 4 जो है लैंग्वेजेस के लिए है, आप देखोगे कि शेड्यूल में हम 400 नंबर हमें किसको मिला है, लैंग्वेजेस को मिला है। तो ज्यादातर जिनका बेस नंबर 400 में है, तो टेबल में सब डिविजन्स कहाँ से ऐड होती है, टेबल 4 से। 5 जो है रेशियल इथिकल एंड नेशनल ग्रुप्स के लिए है, टेबल 6 लैंग्वेजेस के लिए है, जो भी लैंग्वेज है वहां पर लिटरेचर था 8, अभी ये लैंग्वेजेस के लिए, जैसे टेबल 4 भी जैसा है वैसे ही ये लैंग्वेजेस के लिए है। फिर टेबल 7 जो है ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स के लिए, किसी किसी ग्रुप जो लोगों के हैं, जो बहुत नॉमिनेटेड पीपल हैं, जो बहुत रिनाउंड लोग, उनके भी नाम इसमें एडिट है, उनका भी हम नंबर डाल सकते हैं वहां पर। मोस्टली अगर आप देखोगे इसका जो इंडेक्स है वो बहुत ही अच्छा इंडेक्स बनाया है इन्होंने, कोई चीज नहीं छोड़ी है उन्होंने। जहां तक की चीजें ऐड होती रहती हैं, तो आप जब लेटेस्ट एडिशन लेते रहेंगे तो लेटेस्ट एडिशन में आपको नई से नई टेबल्स, नई से नई चीजें एडिड मिलेंगी, जो कि सब्जेक्ट जैसे हर साल हर डिकेड में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर आप 90s में देखें तो कंप्यूटर साइंस की इतनी सारी टर्म्स नहीं थी हमारे पास, तो अगर ये 90s का हमारे पास है DDC तो उसमें कंप्यूटर की बहुत लिमिटेड टर्म्स हैं, पर उन्होंने जगह छोड़ी हुई है वहां पर कि जो आते जाएंगे सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे, जो जो चीजें और नैरो होती जाएंगी जितनी जरूरत पड़ेगी उस नंबर को वो लोग वहां पर ऐड करते हैं। ये थी DDC जो डिब्बे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज में होता है, इसी से ज्यादातर लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन की जाती। फिर हमारा हो गया कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन ये इंडियन क्लासिफिकेशन है, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने डिवाइस की थी। ये एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम है। इसमें क्या है, इसमें आपको नंबर को जो है कंस्ट्रक्ट करना पड़ता, आप नंबर खुद बनाएंगे। आप एक बेस नंबर लेंगे, फिर आप शेड्यूल से देखते जाएंगे कि और इसमें क्या ऐड होगा, फिर उसमें एक PMEST होता है, पर्सनालिटी और मैटर और वो सब भी, एक जो आपका टाइटल होता उस टाइटल को हम ब्रेक कर लेते हैं कि इसमें एनर्जी कहाँ पर है, मैटर कहाँ पर है और बेसिक क्लास कहाँ पर है, वो समझ के हम मेन क्लासेस में चले जाते हैं। जो इसकी मेन क्लासेस है वो हमने आपके इस चैप्टर में दी है। इसके कई एडिशंस आए हैं, लेटेस्ट 7th ही आया है, उसके बाद नहीं पब्लिश हुआ है। और ये ज़्यादातर DU में पहले यूज़ होता था, अभी मैं लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम कर रहे हैं कि नहीं, पर यूजुअली ये DU में था कोलन क्लासिफिकेशन का यूसेज। तो इसकी जो मेन क्लासेस हैं इनको आप 6th एडिशन की क्लासेस हमने आपको लिख के दी हैं यहाँ पर, इनको आप याद रख सकते हैं। जनरेलिया है, Z से है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज 1 है, लाइब्रेरी साइंस को 2 मिला है, बुक साइंस को 3 मिला है, जर्नलिज्म को 4, नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिर फिजिकल साइंसेज, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ये बेसिक जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोग्नोसी, यूजफुल आर्ट्स, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, रिलीजन, लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज, इन्होंने हर किसी एक सब्जेक्ट को एक अल्फाबेट से या 2 अल्फाबेट से उसे डिनोट किया हुआ है, दिखाया गया। एग्जाम्पल हमने यहाँ लाइब्रेरी साइंस का दिया है तो 2 है, पब्लिक लाइब्रेरीज का 2 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का है D:4। D का मतलब हो गया बेसिक, जो हमने इसे क्लास दिया हमने इसे इंजीनियरिंग में ले लिया। फिर ड्राइंग का जो है, ड्राइंग को हमने एक इसमें मैटर ऐड करके हमने ड्राइंग को 4 नंबर से ऐड कर दिया है। ये अभी तक जो हमने आपको बताया ये सारी है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो आपको समझने की ज़रूरत इसलिए है ताकि आप इन्फॉर्मेशन आराम से रिट्रीव कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन को ले पाएँ लाइब्रेरी से। किसी भी लाइब्रेरी में आपके आप देख रहे हैं मुझे आपकी कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है, उसी क्लासिफिकेशन स्कीम के हिसाब से आप देखेंगे ये नंबर्स हैं, मैं उसी शेल्फ पे जाऊंगी जहां मुझे ज़रूरत है, जो मेरा नंबर बनता है। फिर हम बात करेंगे लाइब्रेरी कैटलॉग्स की। कैटलॉग्स वो जो सभी ने देखे होंगे, पहले जो होते थे हर लाइब्रेरी के बाहर एक बड़ा सा कैटलॉग बना हुआ, अभी भी बहुत सारी लाइब्रेरीज के बाहर होता है फिजिकल कैटलॉग जिसे कहेंगे हम। इस कैटलॉग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, इस कैटलॉग की ज़रूरत इसलिए है आपकी जो लाइब्रेरी की कलेक्शन है बहुत ज़्यादा जब होती है तो इसको एक्सेस करना मुश्किल है या इसे लाइब्रेरी में किसी को इसका एक्सेस देना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इंडेक्स या लिस्ट बना लेते हैं अपने मटेरियल का, कलेक्शन का, जिसको हम आराम से अवेलेबल करते हैं इन कैटलॉग फॉर्म। कैटलॉग फॉर्म में मतलब हो गया आपका, आपने जो किताब की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने एक जगह पे लिख दी, किताब का नाम क्या है, इसका ऑथर क्या है, इसके साइज क्या है और इसमें कितने पन्ने हैं اس کی کیا ویلیو ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس کو بیبلیوگرافیکل انفارمیشن کہتے ہیں، اس کتاب میں انڈیکس ہے یا نہیں ہے، اور اس کتاب میں کیا کیا چیزیں ایکسٹرا ہیں، السٹریشنز ہیں تو وہ بھی آپ لکھتے ہیں کہ بہت سارے پکچرز بھی ہیں اس بک میں، تاکہ میں نے جو ہی کارڈ دیکھا اس سے مجھے فٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ارے اس میں یہ یہ کتابیں ہیں۔ اب یہ سب کس پہ ڈیفائن کرتا ہے؟ اگر آپ کے پاس لائبریری میں بکس ہیں، میپس ہیں، ساؤنڈ ریکارڈنگس ہیں، یا کوئی بھی طرح کا الگ طرح کا میٹیریل ہے، یہ سارے ملا کے لائبریری میں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہی طرح کا لائبریری میٹیریل نہیں ہوتا ہے لائبریری میں، سارے میٹیریلس الگ الگ طرح کے لائبریری میں رکھے جاتے ہیں۔ پر ان سبھی میٹیریلس کو ہم ٹوٹل جو میٹیریل لائبریری میں ہے اس کو ایکسس دینے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا ایک کیٹلاگ بناتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو لائبریری میں جو ایکسس ہے، جو آپ کو کتنی صحیح ریسورسز تک پہنچ پاتے ہیں، تو آپ اسے لائبریری کی کیٹلاگ کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیسا کیٹلاگ آپ نے بنایا ہے، آپ جو کی ورڈز اور چیزیں لکھ رہے ہو اس کیٹلاگ میں کس طرح کا کیٹلاگ ہے، اس سے کافی انفارمیشن ملتی ہے جس سے کہ سیدھا ہمیں وہاں تک جانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کیٹلاگ کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اسے اپڈیٹڈ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کیٹلاگ آپ کی لائبریری کے حساب سے، آپ کی لائبریری کی کتنی بڑی لائبریری ہے، کس طرح کی آپ کی کلیکشن ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بنتا ہے، اور پر اسے اپڈیٹ اور مینٹین کیا جاتا ہے ہمیشہ، تاکہ لائبریری کا جو ہیلپ ہے، لائبریری کی جو یوسیج ہے، افیکٹولی اور ایفیشینٹلی ہوتی رہے۔ تو مین یہ کیٹلاگ پر ہی نربھر ہے آپ کا کیٹلاگ کتنا اچھا۔ مینوئل کارڈ بناتے تھے پہلے، ابھی اس کیٹلاگ کو بنانے کے لیے بھی بہت سارے رولس ہیں، ان رولس کو دیکھ کے ہی ہم لوگ یا AACR2 دیکھتے ہیں یا CCC سے لے لیتے ہیں، کوئی سا بھی، جیسے میں نے کلاسیفیکیشن میں بتایا آپ کو اتنی کائنڈس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، اس میں سے کوئی سی بھی ہم چوز کر لیں، اسی طرح سے ہم لائبریری کیٹلاگس کے لیے بھی ایک اپروچ لے لیتے ہیں، کون سا کس طرح سے ہمیں اپنے کیٹلاگ کو، اپنی لائبریری کو کیٹلاگنگ کرنا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہم کیٹلاگ کیوں کرتے ہیں، یہ اس سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں، ایک کیٹلاگ ایک ٹول کی طرح ہے، ہمارے سمجھ لیجئے کی ہے یہ لائبریری میں گھسنے کے لیے، اور لائبریری میں پرنٹ مٹیریل اور نان پرنٹ مٹیریل یا کوئی بھی لائبریری میں مٹیریل جو ہو، کنسسٹنٹ پلان میں اچھی طریقے سے رکھا گیا اور سمجھایا گیا ہو کہ یہ اپروچ ہے، آپ یہاں سے یہاں جائیے اور یہاں پر آپ کو مل جائے گا، سملر مٹیریل، جو ایک جیسا مٹیریل وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو ملے گا، آپ کو جگہ بھی پتہ چل جائے گی، کیونکہ جب آپ لائبریری کیٹلاگ کھولیں گے آپ اوپر دیکھیں گے کلاس نمبر ہوگا، کلاس نمبر کا مطلب ہے کہ آپ کا جو لائبریری کا میٹیریل لگا ہے وہ کلاسیفیکیشن کے حساب سے لگا، تو سیدھے ہی آپ اس کلاس نمبر پہ جائیں گے، وہاں آپ اپنا آتھر ڈھونڈ سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے وہاں تک پہنچنے کی، اپنی ریسورسز کو ریٹریو کرنے کے لیے۔ تو دیکھا جائے یہ سب یوزز جو ہیں ہمارے لائبریری کیٹلاگ کے ہیں، یہ انفارمیشن کو ایفیشینٹلی ہمیں ریٹریو کرنے میں مدد کرتا ہے، یوزرز کو جو انفارمیشن ملتی ہے سب آرام سے اسے دیکھ کے پڑھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اب پلان میں آرڈر میں چیک کرنا ریسورسز کو ایفیشینٹلی، وہ بھی یہ صحیح طریقے سے بتاتا ہے آپ کو، اور انفارمیشن ریٹریول کے اسکلز بھی اسی سے آپ کے انہانس ہو جاتے ہیں، کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیٹلاگ اس طرح سے بنا ہوا ہے، یہاں مجھے جانا ہے، تو وہ کتاب جو اگر نہیں بھی دیکھی ہوئی ہو اس پہ آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو کیٹلاگ کو دیکھنا اور آسانی سے اس سے موو کرنا، آپ کا کارڈس کو آگے پیچھے کریں گے تو آپ کو آسانی سے وہ کارڈس دکھ جائیں گے، اور اس کو پڑھنا ایزی ہے، جیسے کہ چھوٹی سی انفارمیشن کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ انفارمیشن لے کر کے اپنے لیے کتاب ڈھونڈ سکتے ہیں، آرٹیکل ڈھونڈ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو دیکھا جائے۔ لائبریری کیٹلاگ اور کیٹلاگنگ کیا ہے؟ لائبریری آپ دیکھیں گے ہر کسی لائبریری میں ایک اسٹینڈرڈ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، جو کلاسیفیکیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک اسٹینڈرڈ، یا ڈیوی ڈیسیمل سے کر سکتے ہیں یا کولن سے کر لیتے ہیں، وہ اسٹینڈرڈ کلاسیفیکیشن ہے۔ تو کیٹلاگنگ کا رزلٹ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا؟ آپ کے اوپر جو کلاس نمبر لگا ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے کارڈ پہ، وہ کیسا دیا ہے آپ نے، وہ نمبر آپ کا جو لگا ہوا ہے بک نمبر، کلاس نمبر، وہ لائبریری کیٹلاگس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر بھی، جہاں بھی آپ نے बाहर देखा है कैटलॉग, उसके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई होती है। ऊपर एक कॉल नंबर लेफ्ट साइड कोने में होता है, फिर इसका टाइटल, ऑथर और सारी बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जैसे मैं बता रही थी आपको। ये कार्ड कितना बड़ा होता है, 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर्स का, 3 × 5 इंचेस का इन साइज। ये याद रखना आपको, कभी कभी ये पूछा जाता था कि ये कैटलॉग का साइज, अब इसका इतना वैल्यू नहीं रहा है क्योंकि ये कार्ड सब इतने ज्यादा यूज नहीं होते, पर हमारी बुक में ये इन्फॉर्मेशन है, इसे समझने में हमें कैटलॉग कार्ड्स को बहुत आसान हो जाता है। आप चाहे बेशक कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर भी हमारे रूल्स बने हुए हैं कि किसके बाद हमें कॉमा देना है, किसके बाद हमें डैश लगाना है, हाइफन लगाना है, कहां पर किन टैग में हमें कौन सी फील्ड भरनी है, किस चीज को कहां भरना है, वहां पर भी सिस्टम बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं मेन कार्ड एंट्री की, फिर एडिट कार्ड्स भी बनते थे और फिर हम इनमें सब्जेक्ट हेडिंग्स भी देते हैं, असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस एंट्रीज भी, राइटिंग एंड ट्रेसिंग जो होती थी मेन कार्ड के पीछे होती थी। ट्रेसिंग का मतलब ये होता था, मेन कार्ड ये बता देता था कि इस बुक के पीछे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ये किस किस के थ्रू आपको मिलेगा, सब्जेक्ट हेडिंग्स ये लिखी हुई है, एडिट एंट्रीज है, शेल्फ लिस्ट बनती है। ये जो चेकिंग ऑफ कैटलॉग कार्ड्स और शेल्फ लिस्ट होता है, ये किसी एक सीनियर पर्सनल को दिया जाता है, वो इसे चेक करके फाइनल कर देता है, फिर अल्फाबेटिकली इसे लगाया जाता है, या आप डिक्शनरी कैटलॉग की तरह लगाया जाता है, या फिर इसे फाइल किया जाता है। फाइल करने के लिए भी उसमें ट्रेस होती है जो पिजन होल की तरह बनी हुई होती है, जो ट्रे बाहर आ जाती है उसके अंदर एक रॉड होती है, जिस रॉड के अंदर आप देखोगे ये सारे कार्ड्स को लगाया जाता है। जो फर्स्ट कार्ड होता है उस पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मेन कार्ड, मेन कार्ड हमें टाइटल, ऑथर, क्लास नंबर ये सब बता देता है। फिर एडिट कार्ड्स में मेन कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर ऊपर टाइटल होगा वो एडिट एंट्री हो गई, या फिर सब्जेक्ट हेडिंग होगी ऊपर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे एक बुक में सपोज आप ये सोच रहे हैं कि मुझे टाइटल याद है और मुझे ये नहीं पता, अब मुझे कुछ टाइटल भी सही से याद नहीं आ रहा, आपको टाइटल का एक शब्द याद आ रहा है, तो कभी कभी क्या लाइब्रेरी में किया जाता था, इसी टाइटल को इसे ब्रेक भी किया जाता था सब्जेक्ट्स में। अगर हम इसको चार सब्जेक्ट्स बन रहे हैं इसके, तो हम इसको चार में आपको ट्रेस करके देंगे, हाँ आप इस वर्ड के थ्रू भी इसी बुक तक पहुंचोगे, ताकि आप किसी भी तरीके से एक बुक के चार पांच कार्ड्स भी बन जाते थे, जबकि वो टीडियस था काफी बनाना, पर फिर भी बनते थे, ताकि जो हमारा यूजर है वो मल्टीपल वेज से वहां तक पहुंचे, वहां तक किताब को ले पाए। जहां पर कई जगहों पर यूनिट कार्ड सिस्टम का प्रचलन था, फॉलो किया जाता था, मेन कार्ड एंट्री को डुप्लीकेट बना दिया जाता, मेन हेडिंग जो होगी उसके ऊपर बाकी एंट्रीज रेफरेंस के लिए लिखी जाती हैं। जैसे कि मेन एंट्री का कार्ड बन गया, फिर हमने उस पर सब्जेक्ट हेडिंग डाल दी, पर हम सब्जेक्ट हेडिंग किस बेस पे बनाते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग एक लिस्ट भी होती थी, सब्जेक्ट हेडिंग सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, बिब्लियोग्राफीज है, क्लासिफिकेशन स्कीम्स में शेड्यूल्स में से हम निकाल के हम लगाते थे, मगर मेन जब आपका क्लास नंबर जिस सब्जेक्ट का लगा उस क्लास नंबर को डिसइंटेग्रेट करते, उसको जब हम ब्रेक करते हैं, उसको जब हम देखते हैं ये क्लास नंबर शेड्यूल में से ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये चार चीजों को कैरी कर रहा है एक टाइटल, तो उन्हें में हम एडिट एंट्रीज में चारों चीजों को एज सब्जेक्ट हेडिंग लेते हैं। जैसे कि अब हम कीवर्ड से सर्च करते हैं, आप जब भी देखते हैं ओपैक में जाएंगे, आप कैसे सर्च करते हैं, आप चले जाते हैं और अपना कीवर्ड जो भी याद आ जाता है आप अपना कीवर्ड डाल देते हैं, कीवर्ड अगर मैच कर गया तो वो आपको रिट्रीव कर देता है इन्फॉर्मेशन को, वो आपको इन्फॉर्मेशन जहां जहां वो कीवर्ड लिखा होगा वहां वहां वो मिल जाएगा आपको। इसी तरह से यहां पर हम ये करते थे, फिजिकल कैटलॉग था ये, इसलिए हम इससे क्या करते थे, कई तरह की एंट्रीज में सबसे ऊपर, फिर उन्हीं एंट्रीज को हम अलग लगाते थे, जैसे कि हमने मेन अलग लगा दिए अल्फाबेटिकली, फिर टाइटल वाले अलग लगा लिए, फिर सब्जेक्ट हेडिंग्स को अलग लिया। अगर हम सिर्फ सपोज मेडिसिन में जा रहे हैं, तो आपको देखोगे मेडिसिन की ही सारी सब्जेक्ट हेडिंग वाली बुक्स आपको, फिर मेडिसिन के अंदर क्या क्या है, कितनी सारी चीजें हैं जो मेडिसिन के अंडर आती हैं, तो वो आप देखोगे मेडिसिन के बाद दूसरा अल्फाबेट होगा मेडिसिन डैश दिस, फिर उल्टा भी होता था मेडिसिन, जैसे अब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से है तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पहले आएगा मेडिसिन, ताकि अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम याद आ गया, हमने देख लिया, पर हमने देख लिया साथ में ये मेडिसिन को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर मेडिसिन की कोई बुक है तो वो इसी नंबर पे हमें मिलेगी। इस तरह से पहले हम फिजिकल कैटलॉग्स बनाते थे। तो फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स में क्या क्या है, प्रिंटेड जो है बुक कैटलॉग्स हैं, शीफ कैटलॉग है, कार्ड कैटलॉग है, शेल्फ लिस्ट है, और कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग्स भी हैं। अब अगर देखोगे फिजिकल कैटलॉग में, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3x5 inches का कार्ड होता है, इसकी थिकनेस 0.25 mm होती है, ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं। इनमें एक होल होता है नीचे, एक्सेशन नंबर हम फोर्थ लाइन में लिखते हैं, इसमें एक होल इसलिए होता है कि जो वुडन ट्रे हमारे पास पिजन होल की होती है, उस ट्रे को बाहर निकालते हैं, उस ट्रे में हम अपने कार्ड को लगा लेते हैं अल्फाबेटिकल। अगर किसी को सब्जेक्ट में सपोज मेडिसिन में चाहिए तो वो क्या करेगा, मेडिसिन से रिलेटेड वो वाली ट्रे बाहर निकाल आएगा, उसमें बुक्स देख लेंगे क्या क्या बुक्स हैं। अगर किसी को ऑथर है, अब रंगनाथन है, तो रंगनाथन पे काम देखने चाहते हैं कि क्या, स्वामीनाथन पे देखना चाहते हैं क्या काम किया, तो वो उस ट्रे को जो ऑथर वाली ट्रे होगी उसमें जहां एस लगा होगा एस वाली ट्रे को बाहर निकालेंगे, वो भी आगे जाकर के अल्फाबेटिकली लगा हुआ होगा। तो इस तरह से फिजिकल लाइब्रेरीज में फिजिकल कैटलॉग्स ये लगते थे। इन्हें याद रखना भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको ये समझ आ जाएगी, अगर कहीं पर आपके पास उपाक नहीं है, आपको फिजिकल लाइब्रेरी में कैटलॉग ढूंढना है, बुक को ढूंढना है, तो आप कैसे देख सकते हैं। फिर शेल्फ लिस्ट भी बिल्कुल कैटलॉग कार्ड की तरह है, मगर ये बुक के साथ रहती है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो कहा गया था कि शेल्फ लिस्ट और कैटलॉग कार्ड को बना के एक सीनियर मेंबर को दिखाया जाता है, वो टैली करते हैं, इसके बाद इसे फाइनल करते हैं। शेल्फ लिस्ट से ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता है, आपकी जो वेरिफिकेशन होती है स्टॉक टेकिंग में, ये काफी मदद करता है, क्योंकि आपको बुक को निकालने की बजाय आप अपनी शेल्फ लिस्ट को निकाल के देखते हैं हाँ ये बुक यहाँ पर है। फिर है कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग। कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग वो कैटलॉग है जिसे हम ओपैक कहते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अब की जो आज की लाइब्रेरी है उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप NIS की लाइब्रेरी में जाएंगे या आपकी DU की लाइब्रेरी में जाइए, JNU की लाइब्रेरी में जाइए, किसी भी लाइब्रेरी में आप जाइए, देखिए कि आपको ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग मिलेगा। जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग भी इसी तरह का कैटलॉग है जैसे कि जिसमें भी हमने फिजिकल कार्ड जैसे बनाए, इसी तरह में उसमें भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, मगर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे एक्विजिशन जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं ना, इसमें स्पेस का इश्यू, कार्ड को फिजिकली देखना, वो खराब भी हो जाते हैं जब बार बार ही हाथ लगते हैं, वो येलो पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिकल कार्ड्स में और फिजिकल चीजों में आती हैं प्रॉब्लम। यहां पर हमने कंप्यूटर्स की वजह से, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आ गए लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को ऑटोमेट करने के लिए, तो हमें सबसे बड़ा फायदा हुआ, हमारी जो कैटलॉगिंग हुई, जहां हम 8-10 कार्ड्स पहले बनाते थे, अब हमें वो 10 कार्ड्स नहीं बनाने पड़ते हैं, हम अपने कीवर्ड्स भी इसी में दे देते हैं, जहां जहां इसके फील्ड्स बने हुए होते हैं हम वो सारे फील्ड्स को फिल कर लेते हैं। जब आपकी सर्चिंग आ जाती है ओपैक के थ्रू, आप आराम से ओपैक के थ्रू जाते हैं, कोई भी कीवर्ड डाल देते हैं, आपको वो कैटलॉग पता चल जाता है। फिर है वेब ओपैक। वेब ओपैक का क्या और ओपैक में क्या फर्क है, ओपैक तो आपको बिना इंटरनेट के किसी भी लाइब्रेरी का ओपैक देखना, तो उसी लाइब्रेरी में आप जाकर देख सकते हैं। जब आप वेब ओपैक की बात करते हैं तो यहां पर इंटरनेट आपको एक्सेसिबल होता है और ये 24x7 आप देख सकते हैं, कौन सी बुक आई, कौन सी बुक वापस गई है, कौन सी बुक अभी अपडेट हुई है, क्या क्या लाइब्रेरी में आया है, या मैं अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट डाल देता हूं वो जाएगा, सभी कुछ वेब ओपैक के थ्रू है, क्योंकि इंटरनेट 24 घंटे रहने की वजह से ये यूज हो जाता है। तो ये सारे जो कैटलॉग्स के बारे में मैंने बात की, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिक्शनरी और क्लासिफाइड कैटलॉग। डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में हम अल्फाबेटिकली कैटलॉग्स को फाइल करते हैं, और क्लासिफाइड कैटलॉग में हम क्लास के नंबर के हिसाब से उन्हें अरेंज करते हैं। इस तरह से हमारा ये वाला लेसन अब खत्म हो गया है। हमने इसमें ज्यादा जोर जो बातों पे दिया है वो दिया है क्लासिफिकेशन पे और कैटलॉगिंग पे, ISBN नंबर्स पे। ISBN या IFLA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे रूल्स को बनाती है, जिनके बेस पे कैटलॉगिंग रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है और इस लेसन को अच्छे से लर्न करना है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।